प्रवचन हिंदी में दूंगा, आप सब हिंदी समझते हैं? समझते हैं? मराठी इतनी अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि यहाँ मीरज में आपके बीच में आकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़े शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। आज यहाँ जन्माष्टमी का शुभ उत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी वो तिथि है जिस पर भगवान श्री कृष्ण करीब 5000 वर्ष पूर्व यहाँ भूतल पर प्रकट हुए थे। भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। भगवान जब यहां पर आते हैं तो उनके शाश्वत असली स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में ही अवतार लेते हैं। गीता के चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, अजह, लेकिन मैं संभवामि युगे युगे, संभवामि आत्ममायया, मैं अपनी आत्ममाया से, अपनी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति से मैं यहां पर धरती में प्रकट होता हूं। अव्ययात्मा, मेरा शरीर अव्यय है, उसका कभी घटन नहीं होता है और मैं सारे प्राणियों का ईश्वर हूं, मैं परम सत्य भगवान हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जब यहां संसार में अवतार लेते हैं तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति है और उन्होंने साधारण व्यक्ति की तरह जन्म लिया है और साधारण व्यक्ति की तरह ही वो कार्य कर रहे हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कार्य और उनका जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः जत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, अलौकिक है, और जो इन दोनों को तत्वतः जान लेता है, सचमुच वास्तव में जान लेता है, तो उसे यहां पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान अपने धाम से यहां पर अवतार लेते हैं। यहां जो जिस प्रपंच को हम देख रहे हैं, रात में हम आकाश में देखते हैं कितने सारे ग्रह हैं, तारे हैं, तो ये सब हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड के परे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक और धाम है, एक और जगत है, हे अर्जुन, और ये धाम हमेशा रहता है। यहां जब इस धाम का, ये भौतिक जगत का नाश हो जाता है तो उस समय मेरे धाम का नाश नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम। जब कोई मेरे धाम में लौट के आता है तो फिर उसे पुनः यहां जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तद्धाम परमम ममा, वो जो धाम है वो मेरा परम धाम है। इसका मतलब है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे जगह का ज्ञान हमें दे रहे हैं जिसमें कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उस जगह को वैकुंठ बोलते हैं, वैकुंठ, जहां कोई कुंठ नहीं है, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। ये है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें वहां पर जाना है लौटकर। भगवान श्री कृष्ण के धाम से हम सब आए हैं और उनके धाम में हमें लौट के जाना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन इस उद्देश्य को हम भूल चुके हैं। इसलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके धाम का विज्ञापन करते हैं और कहते हैं कि आओ मेरे धाम में आओ, यहां तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हो, नाना प्रकार के कष्टों को झेल रहे हो, लेकिन इस कष्ट भरे संसार को त्याग कर तुम मेरे पास लौट के आओ, मेरे धाम में देखो कितना आनंद है, कोई कष्ट नहीं, वो मेरा धाम वैकुंठ है। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, जब तक ये शरीर है तब तक कष्ट होगा, लेकिन कृष्ण बताते हैं तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे धाम को प्राप्त कर दोगे, तो फिर सदा ये भौतिक जगत से, ये भौतिक शरीर से मुक्त हो जाओगे और वहां तुम्हें एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तुम्हारे स्वरूप है सच्चिदानंद, क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं है और मेरा धाम भी अमर है। लेकिन ये भौतिक सृष्टि अमर नहीं है, भौतिक सृष्टि का भी नाश होगा, भौतिक सृष्टि का सृजन होता है, उसका पालन होता है और फिर उसका विनाश होता है और पुनः उसका सृजन होता है, पालन होता है, विनाश होता है। लेकिन ये सृजन पालन और विनाश के चक्र से परे मेरा धाम है हे अर्जुन, और यहां आत्मा का स्थान है, शुद्ध आत्माएं जो कि काम वासना से, भोग प्रवृत्ति से पूरी तरह से मुक्त है, वही मेरे धाम को लौट कर आ सकते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है जो कि आनंद नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है जो कि मृत्यु से परे होना नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है जो कि बूढ़ा नहीं होना चाहता? कौन है संसार में जिसको कोई कष्ट नहीं चाहिए संसार? लेकिन जब तक हम ये संसार में हैं, हमको ये सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे जबरदस्ती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे धाम में लौट के आओ, मेरे धाम में आओगे तो वहां कोई कष्ट नहीं, तुम्हारे आध्यात्मिक स्वरूप में तुम मेरे साथ में रहकर लीला करोगे, मेरा संग करोगे, मेरी भक्ति करते रहोगे और इस प्रकार से दिव्य आनंद की वृद्धि होगी। ये है हमारा जीवन का उद्देश्य। जिस प्रकार से पर्यटन विभाग के जो सदस्य होते हैं अधिकारी, वो बहुत सारे रंगीन चित्र छापते हैं और अलग अलग जगह वो चित्र को लगाते हैं इस बात का विज्ञापन करने के लिए कि देखो महाराष्ट्र में कितने अच्छे अच्छे पर्यटन के स्थल हैं, कर्नाटक में, उड़ीसा में, बंगाल में, भारत में, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे सुंदर सुंदर चित्र दिखाते हैं। कोई ऐतिहासिक स्थान हो, कोई विशेष प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान हो, ऐसे जगहों में लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारी ऐसे चीज छापते हैं और फिर जगह जगह उसको बांटते हैं, विदेश में भी भेजते हैं ताकि लोग इन चित्रों को देखकर आकर्षित हो जाएं और आकर्षित होकर सोचें चलो हमें भारत में जाना चाहिए, देखते हैं वहां कैसे सुंदर जगह है। या बेंगलोर के लोग सोचेंगे चलो हमें महाराष्ट्र में जाना चाहिए, देखते हैं इतने अच्छे अच्छे स्थान वहां है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के धाम का विज्ञापन देने के लिए ये संसार में आते हैं और सारे प्राणियों को बोलते हैं, खास करके मनुष्य जीवन में सबको बोलते हैं, चलो चलो भगवान के धाम में लौट के चलो, देखो कितना अच्छा जीवन है वहां पर, कोई कठिनाई नहीं, कोई कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है वहां पर, चलो चलो। लेकिन केवल भक्तों की बात कभी कभी लोग विश्वास नहीं करते, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, खुद चले आते हैं, अवतार लेकर आते हैं और फिर वहां पे जो धाम है उनका, धाम का धाम ही लेकर आते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य अपार शक्ति। हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम थोड़ा सूटकेस लेकर, बोरी बिस्तर लेकर, थोड़े पैसे लेकर, कपड़े लेकर इधर से उधर जाते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका घर का घर उठाकर ले जा सकते हैं, बंगले का बंगला उठाकर आप ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह? लेकिन भगवान कर सकते हैं। बंगला तो क्या, भगवान ने अपना सारा धाम उठाकर ले आए हैं यहां पर, इसे वृंदावन धाम कहते हैं। वृंदावन धाम क्या है, यह भगवान श्री कृष्ण का धाम है। बहुत दूर इस भौतिक संसार के परे जहां उनका धाम है वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम की राजधानी है गोलोक वृंदावन, जहां पर स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। और जब श्री कृष्ण सोचते हैं कि मुझे जाके भौतिक संसार में पृथ्वी लोक पर यहां के अज्ञानी लोगों को फिर से आकर्षित करना चाहिए मेरे धाम में, तब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को ही लेकर आते हैं। और जब धाम को साथ में लेकर आते हैं तो धाम के भीतर जो उनके पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, उनको भी लेकर आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो वहां पर उनकी लीला कर रहे थे, उनके भक्त जो थे वहां पर, वो सब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। जिस प्रकार एक मंत्री या राजा एक जगह से दूसरे जगह में जाता है तो कभी अकेला नहीं जाता, साथ में अपने सहायकों को लेकर जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब ये धाम में अपने धाम से यहां भौतिक संसार में प्रकट होते हैं तो अपने सारे नित्य शुद्ध भक्तों को लेकर आते हैं और उनके साथ में लीला करते हैं। और लीला करके हमें उन लीलाओं के प्रति आकृष्ट करते हैं। जब हम उन सुंदर लीलाओं का श्रवण करने लगते हैं तो हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम जागृत होने लगता है, दिव्य आनंद मिलता है। और फिर जब हम भक्ति में प्रगति करने लगते हैं तो हमें लगता है हमें भी वहां जाना चाहिए, ऐसे लीला में भाग लेने के लिए हमें भी जाना चाहिए। यहां हम संसार में तड़प रहे हैं, नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन वहां पर भगवान के धाम में केवल आनंद होगा। इस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में केवल उनके कथाओं का श्रवण करने मात्र से भक्ति का उदय कराते हैं। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भागवत में बताया जाता है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, उनकी कथाओं का श्रवण हम करते हैं तो स्वाभाविक तौर से हमारे हृदय भक्ति का उदय होता है। और जैसे ही भक्ति रूपी सूरज का उदय हमारे हृदय में होता है, वैसे ही शोक मोह भय रूपी अंधकार हमारे हृदय में खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि सूर्योदय के पहले ही जब सूरज के थोड़े थोड़े किरणें या सूरज का आभास थोड़ा बहुत आ जाता है तो सारे अंधकार नष्ट हो जाता है। अंधकार में रात्रि के समय हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। रास्ते में जाएंगे, पता नहीं आगे क्या है, हो सकता है रास्ते में खड्डा है, हम गिर जाएंगे, हो सकता है कोई चोर मिलेगा, हो सकता है कोई कुत्ता आके काटेगा, पता नहीं क्या हो सकता है, खतरा है, तो रात में डर लगता है। लेकिन जब सूर्योदय के बाद में सब उजाला फैल जाता है सब जगह, तो फिर सारा डर चले जाता है। अब हम देख सकते हैं, अरे हम क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे थे, कोई खड्डा नहीं, कोई चोर नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कुछ नहीं, खुला रास्ता है, चलो आराम से जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम अज्ञान के अंधकार में होते हैं, भगवत ज्ञान से विहीन होते हैं, उस समय हमारे हृदय में नाना प्रकार के कष्ट, चिंताएं, तकलीफ वगैरह वगैरह रहता है। लेकिन जब भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, उनके सुंदर कथा का, उनके लीलाओं का भक्तों के बीच में आकर श्रवण करते हैं, तो ये सारे चीजें हमारे हृदय से नष्ट हो जाती हैं और फिर केवल आनंद ही आनंद आता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम नाथ यश्चेह कर्मभिः। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाता है। ये संसार में हम देखते हैं किसी का नाम हो सकता है प्रसन्न है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं रहता। किसी का नाम है अमर, लेकिन उसकी भी मृत्यु होती है। किसी का नाम है सुशील, लेकिन वो सुशील नहीं होता। किसी का नाम है विनय, वो विनय नहीं, विनीत नहीं होता वो। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हम अमर भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं, विनीत हो जाते हैं, सुशील हो जाते हैं। अनंत गुण जो भी सारे हैं देवताओं में, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण स्तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति धावतो बहिः। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि बताते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती, जब हम भगवती भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं अकिंचन भाव से। अकिंचन मतलब कौन? अकिंचन मतलब वो व्यक्ति जिसने संसार में आशा छोड़ दी है। संसार में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी आशाएं हैं, योजनाएं हैं ये प्रपंच के प्रति। हम इतना कमाएंगे, इतना बड़ा आदमी बनेंगे, पहले मारुति गाड़ी है, फिर इंडिका लाएंगे, फिर और लाएंगे, फिर बड़ा टीवी लाएंगे, और पैसे की वृद्धि करेंगे, समाज में बड़ा आदमी बन जाएंगे, कोई अंत नहीं इसका। लेकिन जिस व्यक्ति ने सारे झूठे उद्देश्यों को, अपेक्षाओं को त्याग दिया है, उसको अकिंचन कहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर ये कह देता है कि अब से मैं आपका हो गया, तो फिर क्या होता है, सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरः। सुर मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो देवता गण है, और उनके विपरीत है असुर। दो प्रकार के लोग होते हैं सृष्टि में, सुर और असुर। सुर वो हैं जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं, और असुर वो हैं जो भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, भगवान के विरुद्ध जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है, उनकी भक्ति करता है, तो नारद जी बताते हैं कि देवताओं के अंदर जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सारे उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं खुद ब खुद। लेकिन हराव अभक्तस्य, जो हरि का अभक्त है, जो श्री हरि के विरोध में जाता है, कुतु महद्गुणा, उसके अंदर कहां से अच्छे गुण आ सकते हैं, ये संभव नहीं है। क्यों उसके अंदर अच्छे गुण नहीं आ सकते? क्योंकि मनो रथे नासति धावतो बहिः। धावतो धावता है तो पड़ता है, भाग रहा है एक रथ पे बैठकर। कौन से रथ पे बैठकर? मनोरथेन, अपने मन के रथ के ऊपर सवार होकर इधर उधर भाग रहा है। कभी ये अच्छा लगता है उधर जाता है, कभी वो अच्छा लगता है उधर जाता है। उस प्रकार से फुटबॉल की तरह वो इधर से उधर, उधर से इधर, संसार के, प्रपंच के विषयों के प्रति आकृष्ट होकर इधर से उधर भोग करने की इच्छा से भाग दौड़ करता है। परंतु जहां भी वो जाता है निराश हो जाता है, क्योंकि ये संसार हमें सच्चा आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। ये निश्चित बात है, ये संसार हमें केवल दुख ही दुख दे सकता है, बस दुख के सिवाय कुछ नहीं। तो जिस व्यक्ति ने इस संसार के झूठे आशाओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया है, ऐसा व्यक्ति धनी हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने मात्र से ये सारे अच्छे गुण अंदर आ जाते हैं, और फिर वास्तव में इस जीवन में रहते हुए भी वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है, जिस आनंद के लिए हम सब तरस रहे हैं। लेकिन उस आनंद को हम इस संसार में खोज रहे हैं, इसलिए सदा निराश हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने केवल हमारी दृष्टि को हटा ली संसार से और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में डाल दी, तो फिर हमारा हृदय संतुष्ट हो जाएगा, दिव्य आनंद हमें मिल जाएगा। तो ये दिव्य आनंद के बारे में हमें अनुभूति देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं कि देखो, ये मत सोचो कि केवल ये संसार ही सब कुछ है। ये संसार का सुख तो सुख नहीं, दुख है। और इस दुखमय संसार को त्यागो, देखो मेरे धाम में कैसे सुंदर सुंदर लीला मैं अपने भक्तों के संग में करता हूं। तुम भी यहां आ सकते हो, तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम भी मेरे भक्त हो सकते हो, आओ लौट कर मेरे पास। बचपन में मुझे याद है, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे इलाके में एक आदमी आता था, उसके पास एक छोटी मशीन हुआ करती थी जिसमें से हम देखते थे और वो कुछ घुमाता था और नाना प्रकार के चित्र हमें दिखाई पड़ते थे। तो हम देखकर उसको 25 पैसा देते थे और 25 पैसे देखकर उसमें से एक आंख से देखते थे, नाना सुंदर प्रकार के चित्र वगैरह दिखाया करता था। तो जब भी वो मोहल्ले में आता था, सारे बच्चे हम लोग जाके उसके पीछे भीड़ करते थे। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आते हैं वृंदावन में, तो ऐसे हमें एक खिड़की के माध्यम से दिखाते हैं कि देखो मेरा धाम कैसा है। तो भगवान की अवतार की स्थली या भगवान की लीलाएं एक ऐसे खिड़की है जिसमें से हम भगवान के धाम को देख सकते हैं कि भगवान के धाम में क्या चल रहा है, भगवान कौन सी लीलाएं कर रहे हैं। हमारा भगवत गीता, हमारी श्रीमद् भागवत, हमारे पुराण, ये इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं जिनमें भगवान की सारी पहचान दी गई है। दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, लेकिन गीता और भागवत की विशेषता क्या है कि यहां पूरी तरह से भगवान की पहचान कराई गई है। अन्य ग्रंथों में केवल इतना बताया जाता है कि भगवान है, लेकिन वो भगवान कौन है, दिखने में कैसे है, ये सारा ज्ञान, ये सारी जो भी जानकारी है यहां पर गीता और भागवत में दी जाती है। उनका नाम, उनका पता, उनका टेलीफोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में। कैसे दिखते हैं, उनके मित्र, उनके भक्त कैसे हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, उनका घर कैसा है, दिन भर भगवान करते क्या है, सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहां की संस्कृति ऐसी है कि बचपन से ही हम श्री कृष्ण, श्री राम और अन्य अवतारों के बारे में सुनते आए हैं। कितना सौभाग्य है हमारा। तो इस सौभाग्य का अगर हम फायदा उठाएंगे नहीं और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग को ठुकरा कर हम केवल विषय भोग के मार्ग में हम जाएंगे, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो खास अपने भक्तों के लिए आते हैं, ये पुण्य भूमि है। इस देश में जिसने भी जन्म लिया है उसने कई जन्मों की सुकृति के फल स्वरूप ये जन्म प्राप्त किया है, और इसके बाद भी अगर ये व्यक्ति भगवान के पथ में नहीं चलता, पाप करता है, तो उसे ज्यादा सजा दी जाती है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा, मान लो 1-2 साल का, 3 साल का बच्चा किसी को सड़क में जाकर थप्पड़ मार ले, तो क्या वो आदमी उसको बहुत गंभीरता से लेगा, उस 2 साल के बाद बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन में ले जाएगा? नहीं, सोचेगा ये तो छोटा बच्चा है, और वो भी मजाक करेगा उस बच्चे के साथ, एक प्रेम का लक्षण समझेगा। लेकिन अगर हम और आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारेंगे सड़क में, तो क्या होगा? भीषण विस्फोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उम्र से बड़े हैं, हमें ज्ञान है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और अगर ये जानते हुए हमने ऐसे गलती की तो सजा बहुत कड़क मिलेगी। तो ठीक उसी प्रकार से अन्य देशों में जो लोग हैं अज्ञानी हैं, उनको ऐसे संस्कार मिले नहीं है बचपन से, कृष्ण कौन है, राम कौन है, गीता क्या है, भागवत क्या है, असली धर्म क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, उनको अच्छी तरह से नहीं मालूम। इसलिए वो जो पाप करते हैं उनको अवश्य दंड मिलता है। लेकिन यहां इस देश में, इस पुण्य भूमि में, भारतवर्ष में, जिन लोगों ने ऐसा जन्म लिया है, ऐसे संस्कृति में प्रकट हुए हैं, उन्होंने अगर वैसे ही पाप किए तो उनको बहुत बहुत कड़क सजा दी जाती है। क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए भक्ति क्या चीज है। बचपन से कृष्ण और राम का नाम सुनते आए और बड़े होकर केवल टीवी के सामने बैठे, तो फिर कैसे चलेगा? दिन भर यहां का भोग, उधर का भोग। इसलिए हम देखते हैं कि भारतवर्ष में इतना कष्ट है, संघर्ष जीने के लिए इतना ज्यादा है, लोग इतना तरस रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस स्थान में जन्म लेने के बाद भी हमने भगवान को ठुकरा दिया है। आजकल फैशन हो गया है, हम धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। आजकल आधुनिक काल में हम चाहते हैं कि अगर हम भगवत मार्ग में चलें तो हम पुराने जमाने के हैं। आजकल हमें भी आधुनिक काल से चलना चाहिए, मांस खाना चाहिए, शराब पीनी चाहिए, सिनेमा में जाना चाहिए, हमारे घर में भी बड़े से बड़ा टेलीविजन होना चाहिए, हमने भी उसी पाश्चात्य देश के लोगों की तरह हमें भी व्यवहार करना चाहिए, खूब कैसा कमाना चाहिए, खूब भोग करना चाहिए। तो ये है दुर्भाग्यवश हमारे देश का परिवर्तन। परिवर्तन तो क्या, पतन समझिए। तो अगर हमें यहां समाज में आनंद और शांति को लाना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में चलना है। बहुत आसान है, भगवान हमारे लिए आते हैं यहां पर, इतनी दूर से आते हैं, और हम जो है कि हम उनकी वाणी को सुनते नहीं है, कितने दुर्भाग्य की बात है। ऐसे गलत फहमियां होती हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में। कृष्ण को लोग गलत समझते हैं, वो नहीं समझते कि ये स्वयं भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, जब मैं यहां संसार में प्रकट होता हूं, मानुषीं तनुमाश्रितं, एक साधारण मनुष्य की तरह मैं व्यवहार करता हूं, तो लोग क्या सोचते हैं? मैं भी एक साधारण मनुष्य की तरह हूं। अवजानन्ति माम, वो मुझे नहीं जानते, मूढ़, वो मूढ़ व्यक्ति है, लेकिन मैं परम भाव हूं, मेरे परम भाव को ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसी गलत बातें करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जानना बहुत आवश्यक है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को जानेंगे, ये समझेंगे कि कृष्ण कोई साधारण योगी नहीं थे, कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं थे, कोई साधारण योगी नहीं थे, कोई राजनीति के क्षेत्र में छल कपट करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान है। एते चांस कलह पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। भागवत में बताया जाता है कि इतने सारे अवतार हैं भगवान के, लेकिन उनके उद्गम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते च अंश कलहपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और जो अन्य अवतार हैं वो उनके अंश हैं, या तो अंश के अंश हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने आप अपने आप को अनंत अवतारों में प्रकट किया है, और ये अनंत अवतार जो है बार बार युग युग में इस संसार में प्रकट होते हैं उनकी सुंदर लीला प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण अपने आदि रूप में केवल ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं, करोड़ों साल में एक बार, और वो एक बार केवल 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। कई बार लोगों के मन में यह संदेह रहता है कि भगवान श्री कृष्ण को यहां अवतार लेने की क्या जरूरत है। अगर वो भगवान है तो क्या अपने धाम में बैठकर वो यहां लोगों का उद्धार नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। इसके बारे में एक कहानी हम हमेशा सुनाना पसंद करते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहां क्यों आते हैं। अकबर बीरबल का नाम आपने सुना है। अकबर ने एक बार अपने मंत्री बीरबल से पूछा कि अरे बीरबल, तुम्हारे भगवत गीता में लिखा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि तुम्हारे जो भगवान हैं वो साधुओं को बचाने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए यहां पर पृथ्वी लोक में आते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे भगवान में ये शक्ति नहीं है कि अपने धाम में बैठकर ये सारे काम कर ले? उनको यहां पे आके करना पड़ता है क्या भक्तों को बचाना? वहां पर रहकर भक्तों को बचा नहीं सकते क्या? तो बीरबल ने कहा, सही समय आने पर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बहुत दिनों के बाद में अकबर और बीरबल दोनों नौका विहार के लिए यमुना नदी में गए। एक शानदार नौका था, उसमें अकबर बैठे, बीरबल थे, एक दो मंत्री थे, और अकबर का छोटा पोता था, छोटा बच्चा था वो, अकबर के बेटे का बेटा, और उनके साथ में भी दो तीन और नौके थे जिसमें बहुत सारे सिपाही सैनिक बैठे थे उनकी रक्षा के लिए। और जैसे जल में नौका चलते जा रहा था, बहुत मधुर वातावरण था, वहां बातचीत करते करते बादशाह अकबर को बीरबल को पता नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है। और उधर जो छोटा बच्चा था अकबर का पोता, खेलते खेलते नौके से बाहर वो जल के भीतर गिर पड़ा, और जैसे ही बच्चा गिरा उसी क्षण अकबर ने देख लिया और तुरंत छलांग मार दी पानी में, कपड़ों सहित, बादशाह के कपड़ों में, पगड़ी वगैरह सबके साथ, और तुरंत उस बच्चे को बचाकर वापस नौके में ले आए। दूसरे जो नौके थे उनमें से भी कई सैनिक थे, वो भी कूद पड़े, लेकिन जब तक वो कूद कर बच्चे के पास पहुंचते तब तक बच्चे को अकबर ने बचा भी लिया था और नौके में डाल भी दिया था, इतना जल्दी। तो जब अकबर वापस आए तो कहने लगे, ऊपर वाले की शुक्र है कि ऐसे हमारा बच्चा बच गया, देखो कितनी दुर्घटना हो जाती। तो बीरबल ने कहा, सच्ची बात है, लेकिन हे बादशाह, आप तो सारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आपके इतने सारे नौकर चाकर सिपाही हैं, मंत्री हैं, इन सब के होते हुए जब ये बच्चा पानी में गिर पड़ा तो आप क्यों कूदे? आपके सिपाहियों को क्यों नहीं बोला? इतना बड़े आदमी है आपको खुद कूदने की क्या आवश्यकता है? कि आपके अंदर ये शक्ति नहीं थी कि आप आदेश देते सिपाही कूदो अंदर बच्चे को बचाओ? आप क्यों कूदे अंदर? उस समय अकबर सोचने लगे, और फिर बीरबल ने कहा, आपके प्रश्न का जवाब मिला? अकबर भी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा हाँ मिल गया। तो क्या जवाब था बीरबल का? जवाब ये था कि अकबर राजा पानी में इसलिए कूदे थे क्योंकि वो बच्चे से प्रेम करते थे, अपना पोता था वो, और क्योंकि उस बच्चे के सन में प्रेम था, यहां प्रेम होता है तो आदमी आगे पीछे नहीं देखता, खुद खुद पड़ता है। तो इसी तरह से बीरबल समझाने लगे अकबर को ठीक उसी तरह से, हे कृष्ण, हे अकबर, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और वो तो हर काम करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, परंतु जहां प्रेम का सवाल आता है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो खुद आते हैं। दूसरे अपने दूत को, एजेंट को, शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते, स्वयं आकर बच्चों को बचाते हैं, अपने भक्तों को बचाते हैं। ये है भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध, इसको भक्ति कहते हैं। जिस प्रेम से भगवान इतने बंधे जाते हैं अपने भक्तों के द्वारा कि वो यहां पर आते हैं, खास जल्दी से आ जाते हैं। भगवान को यहां भौतिक संसार में आने के लिए अपने धाम से समय नहीं लगता, उनको कोई वेटिंग लिस्ट में टिकट निकालना नहीं पड़ता है, कोई उनको रिजर्वेशन की तकलीफ नहीं होती है। जैसे ही वो देखते हैं कि मेरे भक्त तकलीफ में है, तुरंत आ जाते हैं। तो ये कारण से भगवान यहां आकर सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और क्योंकि वो मनुष्य समाज में रहते हैं, इसलिए ऐसे लगता है कि वो भी एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं। जिस प्रकार से कभी कभी राजा सोचता है, चलो मेरे राज में जो कैदा, जो कारागार है, जेल है, उसमें जाके देखा जाए कि वहां कैसे काम चल रहा है, ये कैदी लोग खुश है कि नहीं है, तो राजा भी अंदर जेल के जाता है और जाकर अंदर देखता है जेल में कैसे सब चल रहा है, सब कैदी लोग खुश है, ठीक ठाक है। तो जो बुद्धिमान कैदी है वो समझते हैं कि राजा आया है और राजा से प्रार्थना करते हैं कि कृपा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हमको मुक्त कीजिए। तो राजा खुश होते हैं, उन पर मुक्त करा देते हैं। राजा ही एकमात्र व्यक्ति है जो कैदियों को मुक्त कर सकता है, जो कैदियों का जो वार्डन होता है वो नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं उस जेल में जो ये नहीं पहचानते कि ये राजा है, सोचते कि वो भी नया कैदी आया है, अरे इसने कौन सा खून किया होगा, कौन सी चोरी की होगी इसने, तो ये भी हमारे जैसे बंद होकर यहां पर आया है, इसको भी साधारण ऐसा कैदी समझते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण यहां भौतिक संसार में प्रकट होते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं। हम जब यहां जन्म लेते हैं तो अपने कर्मों से बद्ध होकर हम जन्म लेते हैं, हमें जबरदस्ती यहां कर्मों के फल के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कोई बात नहीं सकता, वो भगवान है, पूरी तरह से स्वराट है, स्वतंत्र है, इसलिए वो जब चाहे उस समय जिस रूप में चाहे जिस जगह में चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो उनको पहचानते हैं कि ये तो भगवान है, साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी है वो भगवान को पहचानते नहीं है। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण से सुंदर प्रार्थना करती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, आप तो स्वयं भगवान हैं, मैं जानती हूं। वैसे संसार के संबंध के दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण कुंती महारानी के भतीजे थे, कुंती महारानी वो वसुदेव की बहन थी और श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र। इस प्रकार से कुंती महारानी और कृष्ण का संबंध ऐसे था कि कुंती महारानी संसार की दृष्टि से एक वरिष्ठ पद में थी, लेकिन कुंती महारानी जब श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं आपसे बड़ी हो सकती हूं संसार की दृष्टि से, लेकिन सबसे बड़े वास्तव में आप हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, परम पुरुष आप हैं, लेकिन आपको कोई पहचान नहीं सकता। माया जवनिका आच्छन्नम, क्योंकि लोगों के आंखों के सामने आपके माया शक्ति का पर्दा है, आवरण है, उस पर्दे की वजह से न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, न लक्ष्य से आपको पहचान नहीं सकते हैं। वो ठीक उसी तरह से जैसे कि नटो नाट्य थरो यथा, जैसे कोई व्यक्ति एक नाट्य लीला में आता है और किसी राजा का वेश पहनकर आता है, शिवाजी महाराज का वेश पहनकर कोई नाट्य करता है और हो सकता है कि उसका मित्र उसको पहचान नहीं ले, लेकिन जो निकट से अच्छे ढंग से उस व्यक्ति को जानता है वो तुरंत पहचान लेगा कि अरे ये जो शिवाजी महाराज का रोल कर रहा है ये तो मेरा मित्र है। तो जितने निकट से हम उस व्यक्ति को जानेंगे उतने ही सही ढंग से हम पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है। उसने केवल वेश पहना है शिवाजी महाराज का, लेकिन है तो मेरा मित्र। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के बहुत निकट हैं वो पहचान सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में क्यों ना आए, स्वयं अपने आदि रूप कृष्ण भगवान के रूप में आए या प्रभु रामचंद्र के रूप में आए या अति भयानक नरसिंह देव के रूप में आए, बहुत ही कोमल बतु ब्रह्मचारी वामन देव के रूप में आए, लेकिन भगवान श्री हरि के भक्त अपने स्वामी को, अपने प्रभु को निश्चित रूप से पहचानते हैं, क्योंकि वो निकट है भगवान के। निकट होना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके हृदय में प्रेम है। जहां प्रेम होता है आपके जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको किसी भी पोशाक में वेश में पहचान पाएंगे। तो इसी प्रकार से कुंती महारानी कहती हैं कि आप यहां जब संसार में अवतार लेते हैं तो अज्ञानी लोग आपको पहचान नहीं सकते, सोचते हैं कि आप भी साधारण मनुष्य हैं, लेकिन मैं जानती हूं आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, आप तो परम सत्य भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं आप। तो इसीलिए कृष्ण के लीलाओं को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण के तत्व को समझना चाहिए। जब हम ये तत्वतः समझ लेंगे कि कृष्ण ही भगवान है तब कोई भ्रांति कोई भ्रम की संभावना नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के साथ पांडवों के साथ लीला करते थे, पांडवों का इतना प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति और अर्जुन को पता चला कि ये भगवान है, लेकिन दुर्योधन के सामने जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप भी प्रकट किया उस समय भी दुर्योधन समझे नहीं। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि अभी श्री कृष्ण यहां पांडवों का दूत बनकर आ रहे हैं, शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने भरी सभा में घोषणा की कि श्री कृष्ण की बहुत अच्छी तरह से स्वागत करनी चाहिए, हम उनको इतने अच्छे अच्छे भेंट देंगे, 16 सोना के रथ देंगे, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ उनको देंगे, अच्छे से अच्छे महल में उनको रुकवाएंगे, दुशासन के महल में, क्योंकि दुशासन का महल सबसे ऐश्वर्यशाली महल था। तो उस समय विदुर ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, आप क्या सोचते हैं कि आप श्री कृष्ण को आपके धन से खरीद सकेंगे? उनके पास कोई धन की कमी है? वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ये सब धन, यहां तक कि आपका धन भी वास्तव में उनका है, तो आप ऐसे धन के प्रदर्शन से या प्रलोभन से आप श्री कृष्ण को जीत नहीं सकते हैं। और भीष्म देव भी ऐसा ही कहने लगे। दुर्योधन कहने लगे, हाँ उनको धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन देने से वो क्रोधित हो जाएंगे, उनको अपमान हो जाएगा। तो भीष्म कहने लगे, श्री कृष्ण तो मान अपमान के परे है, वो इन द्वंद्वों में, संसार के द्वंद्वों के, वो इसमें फंसे हुए नहीं है, वो क्रोधित तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए उनका इस प्रकार से अपमान करना उचित नहीं होगा। हे धृतराष्ट्र, आपको श्री कृष्ण की अच्छी तरह से स्वागत करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस उद्देश्य से आप इस शानदार स्वागत करना चाहते हैं कृष्ण का, ये अच्छी बात नहीं है, आपके हृदय में छल है, कपट है। उस समय दुर्योधन कहने लगा, छोड़ो इन बातों को, मैंने योजना बनाई है कि जब श्री कृष्ण यहां पर आएंगे तो मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा, उनको बंद कर दूंगा, और फिर पांडवों को देखो
कैसे उनका साहस छू हो जाता है, खत्म हो जाएगा। कृष्ण के बिना पांडव क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद में ये राज हमारा होगा बिना युद्ध के। तो सभी लोग वहां भरी सभा में हैरान हो गए, यहां तक कि धृतराष्ट्र भी हैरान हो गए। धृतराष्ट्र बोलने लगे, अरे मेरा अहो दुर्भाग्य कि मुझे ऐसा मूर्ख पुत्र मिला। आप तुम सारे वंश के नाश के लिए तुले हुए हो, क्या तुम नहीं समझ सकते कि कृष्ण को तुम कभी नहीं पकड़ सकते। भरी सभा में सारे लोगों ने दुर्योधन की निंदा की कि दुर्योधन तुम्हें कीड़े के समान हो जो कि अग्नि की ओर चल रही है। किसी ने कहा कि अरे दुर्योधन तुम तो एक बालक के समान हो जो कि आग को स्पर्श करने जा रहा है। लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं मानी। बाद में जब श्री कृष्ण आए, शांति का प्रस्ताव रखा उन्होंने, सबने स्वीकार किया लेकिन दुर्योधन ने नहीं। और अंत में जब श्री कृष्ण भरी सभा में आने वाले थे और आए तो दुर्योधन भी वहां आए। श्री कृष्ण दुर्योधन को डांटने लगे कि हे दुर्योधन, क्या तुम नहीं समझते कि कभी भी तुम इस युद्ध में जीत नहीं सकते। क्यों नहीं तुम शांति से राज्य का बंटवारा करते, दोनों शांति से रहो, भाई भाई की तरह भाईचारे की भावना से रहो। उस समय दुर्योधन ने पहले जो बताया था उन्होंने वही दोहराया कि मैं पांडवों को एक सुई के नोक में जितना जगह है उतना भी देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, इतना भी जमीन में नहीं दूंगा। इतना द्वेष था दुर्योधन के हृदय में। और फिर दुर्योधन ने कहा बहुत हो गया ये सब बातचीत, और चिल्लाए सैनिक गिरफ्तार करो श्री कृष्ण को। और सैनिक अंदर भागते आए अपने हथियारों को ऊपर हाथ में रखते हुए। उस समय श्री कृष्ण हंसने लगे और हंस के तुरंत उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। ऐसे प्रतीत हुआ कि उनके शरीर से बिजली चमक रही है, उनके कपाल से ब्रह्मा जी आए, उनके वक्ष स्थल से शिव जी बाहर आए, उनके भुजाओं से लोकपाल दिक्पाल बाहर आए, उनके शरीर से अलग अलग अंगों से अन्य जो भी देवता है सब बाहर निकले, उनके दो आंखों से बलराम और अर्जुन निकले, और वहां नकुल सहदेव भी पीछे आ गए, भीम भी आ गए। इस प्रकार से ये अद्भुत दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभा में सारे लोग कांपने लगे, भयभीत हो गए। सबने ये भयंकर दृश्य देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। असहनीय हो गया यह दृश्य भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का। केवल द्रोणाचार्य, विदुर, संजय और भीष्म इस दृश्य को देख पाए। और जब संजय ने धृतराष्ट्र से यह वर्णन किया कि हे धृतराष्ट्र, अभी श्री कृष्ण अपना विराट रूप दुर्योधन को दिखा रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम तो सगत सारे जगत का कल्याण करते हो, तो मुझे भी दिव्य दृष्टि दे दो जिससे कि मैं तुम्हारा ये रूप देख सकूं। तो श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। और उन चंद क्षणों के लिए धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों से, उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए भगवान श्री कृष्ण ने। और उन्होंने श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप, दिव्य विराट रूप देखा, और देखा तो वो भी चकाचौंध रह गए। और थोड़े क्षण के बाद भगवान ने अपना विराट रूप उछल कर दिया, अदृश्य कर दिया। उस समय दुर्योधन भी कांपने लगा। दुर्योधन ने समझ लिया अब मेरी योजना असफल हो गई। और दुर्योधन और उसके साथियां जैसे अपने अपने कुर्सी पर बैठे थे वैसे वही बैठ गए, मानो कि किसी ने कुछ चीज लगाकर उनको कुर्सी पर चिपका दिया हो। और उस समय कृष्ण उठे और विदुर और सात्यकी उनके साथी को लेकर उस दरबार से हंसते हुए बाहर गए। तो जो लोग कृष्ण को जानते नहीं हैं वो भी दुर्योधन की तरह इस प्रकार भगवान से द्वेष करते हैं। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, गीता भागवत का उपदेश श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से सुनते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान है। और इसलिए हमारे संसार के जो नियम होते हैं, नीति होती है, उसके भीतर हमें श्री कृष्ण को नहीं खींचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को क्यों झूठ बुलाया, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र का हरण क्यों किया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लोग हमेशा ऐसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन लोग ऐसा प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप कैसे दिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे लोगों को पुनः जीवित कैसे कर दिया। ऐसे जो चमत्कार भगवान श्री कृष्ण ने किए उनके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं लोग। इस प्रकार से क्योंकि लोग कृष्ण को नहीं जानते इसलिए इनके लीला के बारे में वो संदेह करते हैं, संशय करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो संशयात्मक दृष्टि से मेरी ओर देखता है वो कभी ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। अश्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। जब हम श्रद्धा से वासुदेव की कथा का श्रवण करते हैं भक्तों के संग में तो हमारे बीच में हमारे हृदय में वो श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो सकती है। और जब शुद्ध भक्ति की स्तर की प्राप्ति होगी तो फिर जैसे कि भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं हमें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज जब हम यहाँ पर नीरज में जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं तो हमें अपने हृदय में ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि आज से हम भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लग जाएंगे, हम सारे पापों को त्यागेंगे और हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे। क्योंकि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है और वो भी बहुत सुलभ है, और वो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, और वो है हरि का हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। श्री हरि श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र उपाय इस कलयुग में है। ये कलयुग में हर जगह झगड़े ही झगड़े दिखाई पड़ते हैं, द्वेष करते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे में दोष देखते हैं, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम वजेत। कि हे राजा परीक्षित, ये कलयुग तो दोषों का सागर है, जहां भी हम देखते हैं वहां दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस दोषों के सागर के भीतर एक महान गुण है, अस्ति ही एक महान गुण है, और वो कौन सा महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य। कृष्ण कीर्तन का मार्ग जिसको अपनाने से मुक्त संगह हमें संसार से मुक्त हो सकते हैं और परम व्रजेत भगवान के परम धाम की प्राप्ति हम कर सकते हैं। केवल हरि नाम संकीर्तन कृष्ण नाम का संकीर्तन का पथ अपनाकर हम हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के संग में इसी प्रकार से आकर हमें कृष्ण भक्ति का आनंद लेना चाहिए, हृदय में जो भी अज्ञान है उसको नष्ट कर देना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाना चाहिए, फिर पुनर्जन्म नहीं पुनर्मृत्यु नहीं। इसलिए भक्त ने प्रार्थना की है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। ये संसार हे प्रभु हे मुरारी हे कृष्ण हे मुकुंद, ये संसार दुस्तारे बड़े दुख का सागर है जिसमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बार बार जन्म लेना बार बार मरना और मरने के बाद पुनरपि जननी जठरे शयनम फिर से एक जननी या माता के गर्भ में पुनः जन्म लेना और ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाना बहुत कष्टदायक है हे मुरारी। इसलिए कृपया पारे इसके पार हमें कर दीजिए, पाही मुरारी हमें बचाइए। और कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं चिंता नहीं करो, जो ऐसी भावना से मुझे पुकारते हैं बहुत जल्दी से मैं आकर उनको बचाता हूं।
तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं कि तेषाम जो लोग अनन्य भाव से मैया वेशित चेतसाम जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, अहम समुद्धरता मैं उनका उद्धारक हूं, उनको उद्धार करता हूं। मैं कहां से उद्धार करता हूं? मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु संसार के सागर से मैं उनका उद्धार करता हूं, मैं स्वयं आता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और उनको आने के लिए कितना समय लगता है? न चिरा, बहुत ही जल्दी मैं आ जाता हूं हे कृष्ण, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनको वापस मेरे धाम में ले जाने के लिए। तो हमें सब इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आप में से सब मृत्यु के बाद में भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग भगवान के धाम में जाना चाहते हैं जहां मृत्यु नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई कष्ट नहीं? वास्तव में जाना चाहते हैं? होए कि नहीं होए? तर भगवंताची भक्ति करायला पाहिजे, नामस्मरण करायला पाहिजे, नाही केलं तर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ते त्या चक्रामध्ये अटकून राहायला पाहिजे मग। आणि मार्ग खूप सोपा आहे, सुलभ आहे, काय कर लागत नाही, पैसे लागत नाही, स्वर्ण लागत नाही। जर आम्हाला भगवंतांना विकत घ्यायचं आहे तर त्याची किंमत काय आहे? किंमत आहे आमचं प्रेम, आमची भक्ती भावना, श्रद्धा। कारण कृष्ण आमचे सर्वस्व आहेत। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन हे। तो कृष्ण ही हम सबके प्राण धन है, उनको प्राप्त करना है तो श्रद्धावान बनना चाहिए, श्रद्धावानों के संग में आना चाहिए, फिर हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आपने इतने अच्छी तरह से शांति से प्रवचन सुना। यहाँ मीरज के भक्तों के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें यहाँ आकर थोड़ी बहुत भगवान श्री कृष्ण की सेवा और आप सब की सेवा करने का मौका दिया है, और हमें ये काबिल समझा कि आके यहाँ श्री कृष्ण के दोबारे में दो बातें हम बता सकें आप सबको। और उन्होंने इतने अच्छे उत्सव का आयोजन किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और हम सबको यहाँ आकर कृष्ण कथा का, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भक्ति का आनंद लेने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और आशा करते हैं कि आप सब भी इन भक्तों का साथ देंगे, और मीरज में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन और भी अच्छी तरह से बढ़ाते जाएंगे, अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे, और साथ साथ आपके जो पहचान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं इत्यादि, उनको भी इस बहुत ही सुंदर सुलभ दिव्य पथ में ले आएंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, और प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।
हाँ, वैष्णव की कृपा थी, लेकिन फिर भी ऐसे उसने कौन से संस्कार किए हैं जिससे कि वो वैष्णवों के संग में आया? वो क्यों आया वैष्णवों के संग में, दूसरा क्यों नहीं आया? वैष्णव की कृपा मिलने के लिए भी तो वैष्णवों का संग चाहिए ना, तो वैष्णवों का संग इसको क्यों मिला, उसको क्यों नहीं मिला, ये भी प्रश्न आता है। तो उसकी क्या योग्यता थी जिससे कि उसे वैष्णवों का संग प्राप्त करने के लिए योग्यता मिली? कुछ तो पूर्व जन्मों के संस्कार के हिसाब से ही। 5 मिनट कीर्तन करें।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Hare Rama.